समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्म दिवस। श्रोताओ, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनोज, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड डे एवरीबॉडी, वेल लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा विद मनोज हियर एंड टुडे वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। We have a very interesting topic that we'll be discussing in our discussion segment, which is Dateline India. We'll provide you reports. Also, we'll play capsules for you. We'll be paying our tributes and there is a lot more. So stay with us for the next half an hour, listeners. Stay tuned with us. We begin with the news headlines first.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोक सेवकों से असाधारण गति से काम करने का आग्रह किया।
US Vice President J.D. Vance arrives in India on a 4-day visit scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi this evening.
झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए।
Pope Francis passes away following prolonged illness.
घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में उछाल।
And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders to lock horns with Gujarat Titans at the Eden Gardens this evening. And now it's time for our discussion segment, Dateline India, which I was talking about in the beginning as well. And today we will be talking about National Civil Service Day. Well, today it's 21st April and every year this day, on this particular day, National Civil Service Day is being observed. Well, there are reasons for that. The Government of India commemorates National Civil Services Day to acknowledge and also to celebrate the exceptional efforts of our civil servants engaged in public service, which is the backbone of the nation's administration, as they devote themselves to the cause of citizens. Well, first, let's explore today's history as well, this day's history. This national observance, it was first marked on April 21 in the year 2006. And this day's history can be traced back to the time when the first Home Minister of Independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, addressed the probationers of administrative services officers at Metcalfe House in Delhi. And then there he referred civil servants as Steel Frame of India, and this was in the year 1947 on this very day, April 21. And while inaugurating the newly created Indian Administrative Service, he said, and I'm quoting him, "The days when the foreigners could be masters are over and the officers must be guided by the real spirit of service in their day-to-day administration, for in no other manner can they be fit in the scheme of things," unquote.
सिविल सेवा शब्द का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा है, खास तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, जब सिविलियन कर्मचारी प्रशासनिक भूमिकाओं में शामिल थे और उन्हें लोक सेवक कहा जाता था। हालांकि सिविल सेवाओं के विकास का पता भारत के इतिहास में अलग अलग ऐतिहासिक अवधियों से लगाया जा सकता है।
Yes, Manoj, now let's take our listeners way back. Well, in ancient times, Kautilya's Arthashastra, it outlined key elements of governance and the roles of rulers and bureaucrats. The higher bureaucracy, according to the Arthashastra, consisted of two main categories, the mantris, who were the highest advisors to the king, and the amatyas, who handled the administrative functions. And this basically was covered in Saptang theory of state. And during the medieval period, the Mughal era witnessed a bureaucratic structure based on the Mansabdari system, in which civil servants were present for various civil and military functions. Well, this was way back in time. And while the groundwork for this administrative framework, it was laid down by Warren Hastings, and subsequent reforms and organizational structuring were carried out by Charles Cornwallis, due to which he was known as the father of civil services in India.
हालांकि परीक्षाओं का पाठ्यक्रम यूरोपीय क्लासिक्स के अनुकूल था, परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थीं, परीक्षा पास करने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि बहुत से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बने। इसके बावजूद रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद 3 साल के भीतर 4 अन्य भारतीय भी उत्तीर्ण हुए। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में वर्ष 1922 से आयोजित की जाने लगी, शुरू में इलाहाबाद में और बाद में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ दिल्ली में।
Now let me tell you about UPSC, Union Public Service Commission. Well, following the implementation of the Constitution of India on January 26, 1950, the Federal Public Service Commission, it came to be known as Union Public Service Commission, which is UPSC. Well, post-independence, the civil services focused on increasing efficiency in first, administration, second, economic development, and third, it was modernization. And it was responsible for implementing 5-year plans, also regulating trade and overseeing government policies.
17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आज सरकार ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता इस बात से निर्धारित होती है कि कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक कितनी गहराई से पहुंचती हैं और जमीनी स्तर पर उनका वास्तविक प्रभाव क्या है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी के युग में शासन का मतलब व्यवस्था का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि संभावनाओं को बढ़ाना है।
And it is really important that I should mention here that Indian civil service obtained a national character, significantly playing a very positive part in becoming a unifying element for the diverse states within the Union and contributing here to the socio-economic progress of the nation. And there is also another reason here for their importance, actively participating in developmental initiatives, also formulating and implementing policies. It has also been instrumental in ensuring essential service delivery, directly impacting citizens at the grassroots level, at the deeper level as well.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास भी विरासत भी के सिद्धांत से वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली वडनगर में स्थापित पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय इसी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारत और गुजरात की शाश्वत परंपराओं को समर्पित एक अनूठा स्मारक बनकर उभरा है। पहली फरवरी 2025 को जनता के लिए खोले जाने के बाद से इस संग्रहालय ने मात्र 75 दिनों में लगभग 32,000 पर्यटकों का स्वागत किया है। क्या खास है इस संग्रहालय में, सुनते हैं हमारी संवाददाता से।
298 करोड़ की लागत से विकसित यह संग्रहालय जीवंत उत्खनन स्थल को डिजिटल तकनीक और भौतिक कथा वाचन के माध्यम से जीवंत अनुभव में बदल देता है। यह संग्रहालय वडनगर की 2500 वर्षों की समृद्ध विरासत की गहरी और जीवंत झलक भी प्रस्तुत करता है, जिसमें कला, वास्तुकला, व्यापार, शहरी नियोजन और प्रशासन के अद्वितीय समन्वय का अद्भुत चित्रण है। वडनगर में हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन जैसे विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व भी सदियों तक बना रहा है। वडनगर का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यन सांग द्वारा लिखे गए उल्लेखों में भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस संग्रहालय की विशिष्टता इसके सीधे 4000 वर्ग मीटर में फैले एक वास्तविक उत्खनन स्थल से जुड़ाव है, जहां 16 से 18 मीटर गहराई में पुरातात्विक अवशेष दिखाई देते हैं। आगंतुक एक विशेष रूप में निर्मित पुल से गुजरकर इस स्थल का अवलोकन कर सकते हैं और एक एक्सपीरियंशियल वॉकवे शेड में भी वास्तविक समय में चल रही उत्खनन गतिविधियों को निहार सकते हैं। साथ ही इस ग्रंथालय में 5000 से अधिक कलाकृतियां, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, सिक्के, आभूषण, उपकरण, मूर्तियां, शंख उत्पाद और कंकाल अंश और अनाज जैसे जैविक अवशेष भी इसी उत्खनन स्थल से प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन और डिजिटल प्रदर्शनों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया गया है। अब तक यहां पहुंचे 32,000 आगंतुकों में से लगभग 28% छात्र और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है। वडनगर में इस संग्रहालय की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस की भावना के अनुरूप है, जो भारत की समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर उजागर करती है। यह संग्रहालय प्रौद्योगिकी, विरासत और शिक्षा को जोड़कर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को अतीत से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट।
वेल नाउ लिसनर्स, मूविंग ऑन, birds, they play a crucial role in maintaining healthy ecosystems and support on the well-being of both humans and other species. They play vital roles in pollination, seed dispersal, pest control and nutrient cycling, which are essential for diversity. But however, we are experiencing significant declines in bird population, and in this particular situation, the Forest Department of Manipur government, along with local clubs, initiated a project in Tamenglong district of Manipur to conserve hornbill bird. We have more on this from our Imphal correspondent.
Hornbill birds are known as farmers of the forest, and around 57 different species of hornbill are found across the world. In India, 11 species of hornbill are found, and experts said that 6 species of hornbill are found in Manipur, especially in Tamenglong district. These species are great hornbill, oriented pied hornbill, rufous hornbill, brown hornbill, plain pouch hornbill, and red-headed hornbill. These birds, once found abundantly in Manipur, have now declined in population due to many reasons. Among them is deforestation, which triggers habitation loss and hunting. In an attempt to conserve hornbill, the Forest Department of the Manipur government, under the guidance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, took up a project hornbill conservation in Tamenglong district in 2023. The volunteer of Rainforest Club of Tamenglong are also involving in the project. Speaking to Akashvani News Parikrama, the secretary of Rainforest Club of Tamenglong district, Mr. Ram Hiam, said that the habitation areas of hornbill in Tamenglong district has been identified, and action plan for conservation of the hornbill will put in place under the guidance of Forest Department in those areas. He said,
before these scientific studies arrived, our story, I says, our forefathers are deeply rooted. Our culture is deeply rooted with hornbill. And we have songs, we have story based on hornbills. And it really become one of the most important birds in our area, because it reflects our traditions, the way of living. And most of the attires are based on the patterns, beautiful patterns of the hornbill feathers and all. So it's really important for us. Now, the conservation of hornbill, it started recently because we doesn't have that much support also, and people are not much aware that this beautiful hornbill is going to extinct. But recently people are come up that this particular hornbill should be conserved and we must protect, because the population are becoming very less compared to the olden days. So this conservation is a new project. It's just a startup. We have one village called Charinapang between Barak and Mukhu River. So we identified that one village, and there are some village in Tamai side also, but we are yet to give a proper demarcation, I mean mapping. But we get the report that there are hornbills out there also. But we went there to Charinapang already, along with the Forest Department. Hornbill is mainly building nests, and they stayed in the big trees. But those big trees are cutting down by zooming or for timber logging. So timber logging is one of of the main purpose, because timber logging cannot cut down the small trees, but it based on the big trees, which is very suitable for the hornbill to be their home.
The hornbill bird is closely related to the tradition and belief of different communities living in Manipur. The Manipur government has been organizing hornbill festival every year since 2020 in Tamil Nadu district as a campaign to conserve the bird. JJ Thukchom, Akashwani News, Parikrama, Imphal.
राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से प्रदेश के राज्य पक्षी गोडावण के तीसरे चूजे का जन्म हुआ है। अब इनकी संख्या 55 हो गई है। साथ ही इस विधि से गोडावण को जन्म देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। एक रिपोर्ट।
जैसलमेर के सम गांव के सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से एक और गोडावण चूजे का जन्म हुआ है। पिछले साल इसी प्रक्रिया से गोडावण चूजे का जन्म हुआ था और इस साल दो और चूजों ने जन्म लिया है। ये उपलब्धि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण प्रजाति के संरक्षण में बड़ी सफलता मानी जा रही है। डेजर्ट नेशनल पार्क के DFO ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए नर गोडावण को विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है। इसमें लगभग 8 महीने का समय लगा। उन्होंने कहा कि सफलता से संकटग्रस्त प्रजाति के प्रोजेक्ट GIB को नई दिशा मिली है। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। इससे पहले चंडीगढ़ में एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से पराजित किया।
Yes, Manoj, continuing with cricket only. Well, the Board of Control for Cricket in India, BCCI, announced the men's central contracts list for the 2024-25 season today. Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja have retained their A+ category contract despite retiring from the T20 international format. And in a notable change, Shreyas Iyer and Ishan Kishan, they have returned to the contract list, with the former getting B category contract, Shreyas Iyer, while the latter in C category contract list, Ishan Kishan I'm talking about. The duo were left out last year due to their absence from the domestic matches. This was last year. Ravichandran Ashwin, who retired from international cricket, has been replaced by Rishabh Pant in A category contract. Now the latest additions to the central contracts list, all players in grade C, include Nitish Kumar Reddy, Dhruv Jurel, Abhishek Sharma, Sarfaraz Khan, Akashdeep Varun Chakravarti and Harshit Rana. The BCCI pays the grade A+ players an annual remuneration of 7 crore rupees, while grade A players, this is just A, not with plus, receive 5 crore. Grade B cricketers get 3 crore, while players in the grade C category get 1 crore each. Now Manoj, let me provide our listeners with the business updates. The benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 1%, extending their upward trajectory for the 5th straight session, with banking, IT and oil and gas stocks leading the charge. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 855 points to close at 79,409. The National Stock Exchange Nifty 50 gained 274 points to settle at 24,126. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 96,980 rupees per 10 grams and silver 999 fine was also trading up at 96,330 rupees per kilogram when reports last came in. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Tarawati, who was born on the 21st of April 1908 in Bhatinda, Punjab. She actively participated in the Swadeshi movement, non-cooperation movement and Salt Satyagraha.
Tarawati's father, Murari Lal, was deeply influenced by Arya Samaj. He ensured the education of Tarawati and sent her to Lahore for school education. Even after her marriage, she remained committed to the cause of independence and joined the Indian National Congress along with her husband.
She actively promoted the use of khadi. In 1930, she took part in a satyagraha in Muzaffarnagar against the sale of liquor. Tarawati's three-month-old daughter was incarcerated along with her for 3 months. With Vande Mataram and Jai Hind on her lips, Tarawati spent 3 months in prison weaving khadi and following the path of Mahatma Gandhi.
She was also imprisoned during the Quit India movement and sent to jail in Varanasi. Talking exclusively to All India Radio, Tarawati's son, Dr. Praveen Kumar Gupta, recalled her nationalistic zeal.
A firm follower of Arya Samaj, Ammaji devoted her life to social service. She started a free vocational training school for poor girls and an old age home for senior citizens. She strongly believed in Vinoba Bhave's Bhudan movement and worked for it.
Tarawati died in 2007 at a residence in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
We also remember Assamese freedom fighter Mangovind Chakravarti, who was born on the 21st of April 1893 in a remote village of Satrasal in Dhubri district of Assam. Chakravarti left his law studies and joined the non-cooperation movement on the clarion call of Mahatma Gandhi in 1921. Mangovind joined the freedom movement as a student activist. After completing his graduation in Calcutta in 1919, he returned to Assam and worked in his village for the upliftment of the poor and women on the issues of education and health. After joining the non-cooperation movement in 1921, Mangovind organized burning of foreign clothes in the streets of Calcutta and started wearing khadi, which he continued to do throughout his life. He was jailed many times for his active participation in the freedom movement. After independence, Mangovind worked for the upliftment of the backward areas. By his relentless efforts, he established 9 schools, 4 government dispensaries and 2 post offices in Dhubri district. Mangovind died on the 28th of April 1973 in Dhubri. The then President of India, Fakhruddin Ali Ahmed, was among the first ones who sent a telegram of condolence to the bereaved Chakravarti family. We salute the great freedom fighter. We remember freedom fighter Ganpat Rai Pandey, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Born on the 17th of January 1809 in Ranchi, Jharkhand, Ganpat Rai was the Diwan of the Maharaja of Chota Nagpur and took an active part in the 1857 uprising.
He was captured by the British forces in March 1858. His property was confiscated and he was executed by hanging on the 21st of April 1858 in Ranchi.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस.
Yes, Manoj, beginning with a musician here in this particular segment, I am talking about Prince Rogers Nelson, well, popularly regarded as only Prince, singer, songwriter, musician, one of the most influential musicians of his generation. Well, talking about his vocal range first, he had a very wide vocal range, which included a far-reaching falsetto, very high-pitched screams, and he has been a multi-instrumentalist, often preferring to play all or most of the instruments on his recordings. He incorporated variety of styles, including funk, rock, new wave, soul in his songs, jazz and blues, and also hip-hop. Now, listeners, we are playing 17 Days for You by Prince.
आज शकुंतला देवी की पुण्यतिथि है. उन्हें आम तौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है. बचपन से ही वे अद्भुत प्रतिभा की धनी थीं. जटिल गणितीय गणनाएं अत्यंत सरलता से मौखिक रूप से हल करने की कुशलता की वजह से उन्हें मानव कंप्यूटर का नाम दिया गया. उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। शकुंतला देवी के अंदर पिछली सदी की किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की क्षमता थी। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वे ज्योतिषी भी थीं। उनके 84वें जन्मदिन पर गूगल ने उनके सम्मान में उन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। उन पर एक फिल्म भी बनी है, आइए सुनते हैं इसी फिल्म के संवाद का अंश।
Now say this is Astrid Moore asks you to multiply 85 into 85. Take the first digit which is 8 and multiply it by 8 plus 1 which is
9.
Multiply 8 into 9 which is
72.
Take the two fives from the units place and multiply them. 5 into 5 is
25.
Put the two together and what's your answer?
72.
Listeners, today we are also remembering P. Bhaskaran. Well, today it's his birth anniversary. Poet, lyricist of Malayalam film songs and also filmmaker. Well, he penned more than 3,000 songs and also directed feature films, documentaries, 6 feature films to be precise, and acted in several movies. He was initially a journalist and an All India Radio employee before becoming active in the film industry. Well, he was well known for the simple use of language in his songs and poems. His words were simple, yet they emanated from deep and ruminative thought.
आज भारतीय सैनिक गबर सिंह नेगी की जयंती है। वे प्रथम विश्व युद्ध में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गढ़वाल उत्तराखंड के वीर सपूत थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह नेगी 39वें गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में राइफल मैन थे। 10 मार्च 1915 को फ्रांस में न्यूवे चैपल नामक स्थान पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध के मोर्चे पर असीम साहस, वीरता और कर्तव्य परायणता के लिए गबर सिंह नेगी को ब्रिटिश सरकार ने सर्वोच्च सैन्य पदक विक्टोरिया क्रॉस से मरणोपरांत सम्मानित किया था।
जान दी तुमने वतन पे, हाँ पे ये एहसान है।
Well, today we are also paying tributes to Nina Simone, singer, songwriter, and also a pianist. Her music spans styles including classical, folk, gospel, blues, jazz, R&B, and also pop. So now let's listen to her beautiful voice, listeners.
Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love.
आज जन्म दिवस है शिवाजी साटम का। वे एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं। उन्हें जासूसी टेलीविजन श्रृंखला CID में ACP प्रद्युमन की भूमिका के लिए जाना जाता है। वे वास्तव, गुलामे मुस्तफा, कुरुक्षेत्र, फिजा, यशवंत, चाइना गेट, टैक्सी नंबर 9211, नायक जिस देश में गंगा रहता है आदि फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। मराठी में उन्हें उत्तरायण जैसी फिल्म से पहचान मिली है। आइए सुनते हैं उनका एक संवाद।
नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारी ऐसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है, देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक।
Well, today we are also remembering Samuel Clemens, well, popularly known by his pen name Mark Twain, writer, humorist, and also essayist. Let me name his novels here: The Adventures of Tom Sawyer, which mostly students they have read in their school days, and its sequel also, Adventures of Huckleberry Finn. And this was also called the great American novel, The Adventures of Huckleberry Finn. Another novel which I could name here is A Connecticut Yankee in King Arthur's Court and Pudd'nhead Wilson.
आज जन्म दिवस है AB राज का। उनका जन्म 21 अप्रैल 1925 को अलपुझा त्रावणकोर ब्रिटिश राज भारत में हुआ था। वे एक निर्देशक और लेखक थे जिन्हें आक्रोशम, अग्निसारम और कजुकन के लिए जाना जाता है। 23 अगस्त 2020 को चेन्नई, भारत में उनका निधन हुआ। 1951 से 1960 तक उन्होंने 10 सिंहली फिल्मों का निर्देशन किया तथा 1963 से 1984 तक 65 मलयालम फिल्मों का निर्देशन किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक गीत।
भूमिदं पुष्पावर्णम् ग्रामस्य तिरुवाभरणम्।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।